रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार और जेएनजेड प्रतिनिधियों के बीच हुआ 10 सूत्रीय समझौता। भ्रष्टाचार मानव अधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। सभी से चुनाव संपन्न कराने के कार्य में सहयोग करने का प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। काठमांडू विश्वविद्यालय से विभिन्न 17 देशों के 196 सहित 2209 छात्र हुए दीक्षित। और मोरक्को के एक ऐतिहासिक शहर फेंस में एक 2 मंजिला इमारत के ढहने से कम 19 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार और जेएनजेड के प्रतिनिधियों के बीच आज ऐतिहासिक 10 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और जेएनजेड आंदोलन के प्रतिनिधियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि इस समझौते के क्रियान्वयन से नागरिक अधिकार और सुशासन के लिए भविष्य में नागरिकों को फिर से आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है। से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दंडहीनता, भेदभाव, बहिष्कार और आर्थिक सामाजिक असमानता के खिलाफ उत्पन्न आम असंतोष और निराशा का परिणाम बताया गया है। समझौते में स्वीकार किया गया है कि जनविश्वास को खो जाने के कारण प्रतिनिधि सभा का विघटन हुआ और इसी आंदोलन के दबाव में आगामी फागुन 21 गति के लिए चुनाव की तिथि की घोषणा की गई। संविधान संशोधन और निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों और नीतिगत निर्णयों में होने वाले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानों के दलीयकरण और दलीय भागबंदारी के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों को समाप्त करने सहित विभिन्न मुद्दों की निष्पक्ष जांच कर सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया जाएगा। सार्वजनिक पदों पर रहे व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने नेताओं के नाम पर सार्वजनिक जमीन, संपत्ति और बजट का उपयोग कर देश भर में चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों, कोषों, ट्रस्टों आदि की जांच की जाएगी। यदि कोई संस्था सार्वजनिक हित के विरुद्ध या गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाई गई तो उसे भंग कर उसी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। आगामी चुनाव में बेजिला बिना जिले वाले और अंतर निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने वाले मतदाताओं को उसी जिले से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी जहां वे रहते हैं। मतपत्र पर किसी को भी मत नहीं, नो वोट का विकल्प शामिल किया जाएगा। विदेश में रहने वाले नेपालियों के लिए मतदान की व्यवस्था करने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भाद्र 23 और 24 के आंदोलन में भाग लेने के आधार पर किसी के खिलाफ भी फौजदारी जांच या अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। ये समझौता सरकार और जेएनजेड के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार की सबसे बड़ी चुनौती है। 77वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता नहीं है बल्कि ये गरीब, असहाय और अवसरों से वंचित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला एक गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। प्रधानमंत्री कार्की ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी हद तक कठोर कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के माहौल के बिना मानव अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री कार्की ने संशोधित कानून और समझौतों के आधार पर संक्रमणकालीन न्याय के बाकी कार्यों को पूरा करने तथा पीड़ित मैत्री और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित संयंत्रों के सफल होने में अपना विश्वास व्यक्त किया। एक अन्य संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्की ने लोकतंत्र की आत्मस्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होना याद दिलाते हुए कहा कि सरकार 2082 फागुन 21 के चुनाव को और अधिक किफायती, पारदर्शी और प्रविधि अनुकूल बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने समय पर चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील भी की। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा है कि न्याय के बिना मानवाधिकार की कल्पना तक नहीं की जा सकती। नेपाल बार एसोसिएशन के आयोजन में जनकपुर धाम में आज से शुरू हुए 91वीं कार्यकारिणी परिषद की बैठक और मानवाधिकार संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रधान न्यायाधीश राउत ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मानवाधिकारों की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के बिना सुशासन और न्याय की बात नहीं की जा सकती। काभरे के धुलीखेल स्थित काठमांडू विश्वविद्यालय केयू में आज 31वां दीक्षांत समारोह पहला चरण आयोजित किया गया, जिसमें 2209 छात्र दीक्षित हुए। इनमें 17 देशों के 196 विदेशी छात्र शामिल हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर अच्युत वागले ने बताया कि दीक्षित छात्रों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रिटेन, भारत, जापान, मलेशिया, मालदीव, मैक्सिको, नामीबिया, रूस, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के 196 विदेशी छात्र शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री एवं काठमांडू विश्वविद्यालय के कुलपति सुशीला कार्की ने कहा कि नेपाल के विश्वविद्यालयों के कुलपति विद्वान व्यक्ति को बनाने का गृह कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि हाल के समय में प्रधानमंत्री द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति की भूमिका निभाने की व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता बोध हुआ है और इसी के अनुरूप शिक्षा मंत्री महावीर पून संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक चर्चा, परामर्श और गृह कार्य कर रहे हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार के लिए मोहतरी जिले में 6027 पेड़ कटाई की जाएगी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार परियोजना के अंतर्गत कमला ढलकेवर पथलिया सड़क पूर्वी खंड आयोजना के प्रमुख राजेश कुमार दास के अनुसार विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के बीच लंबे समय के बाद वन विभाग, वन तथा भू संरक्षण विभाग और वन तथा पर्यावरण मंत्रालय से होते हुए संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेड़ काटने का आदेश प्राप्त हुआ है। उनके अनुसार इसके तहत सरलाही जिले में 3674 और धनुषा जिले में 1876 पेड़ काटने का आदेश हुआ है। उन्होंने बताया कि सड़क विस्तार के दौरान शहरी और बाजार क्षेत्रों में 6 लेन सहित 31 मीटर चौड़ाई तथा अन्य क्षेत्रों में 4 लेन सहित 18 मीटर चौड़ाई रखी जाएगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि डिजिटल माध्यम से होने वाली हिंसा को कम करने के लिए सभी को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। संचारिका समूह द्वारा काठमांडू में आयोजित लैंगिक हिंसा और संचार माध्यम की भूमिका विषय पर आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री खरेल ने कहा कि अभी लैंगिक हिंसा की प्रवृत्ति और शैली बदल गई है, इसलिए उससे सुरक्षित रहते हुए डिजिटल हिंसा के खिलाफ अभियान चलाना आवश्यक हो गया है। मंत्री खरेल ने कहा कि सरकार निर्धारित समय के भीतर ही चुनाव संपन्न कराने और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप सुशासन कायम करने तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार के प्रवक्ता भी रहे संचार मंत्री खरेल ने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितता संबंधी बड़े प्रकृति के 25 से अधिक फाइलें सरकार ने आगे बढ़ा दी है। काठमांडू उपत्यका खाने पानी लिमिटेड KUKL ने बताया है कि सॉफ्टवेयर विलय के कारण भुगतान सहित सभी सेवाएं 3 दिनों तक बंद रहेगी। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पौडेल ने जानकारी दी है कि क्षेत्र पार्टी शाखा और त्रिपुरेश्वर शाखा के विलय तथा महाराजगंज और कमलादेश शाखाओं के सॉफ्टवेयर एकीकरण का कार्य करना है। इसी कारण से मंगसिर 26 गते दोपहर 3 बजे से लेकर मार्गशीर्ष 28 गते तक सभी सेवाएं बंद रहेगी। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव के साथ नेपाल के लिए कतर के राजदूत मिशाल मोहम्मद अली अल अंसारी ने शिष्टाचार भेंट की है। लेनचौर स्थित उपराष्ट्रपति के कार्यालय में आज हुई भेंट के दौरान उनके बीच नेपाल और कतर के बीच आपसी संबंध, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग, श्रम, आप्रवासन, व्यापार आदि विषय पर चर्चा हुई। ये जानकारी उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने दी। मोरक्को के एक ऐतिहासिक शहर फेंस में एक दो मंजिला इमारत के ढहने से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि बचाव कार्य अभी भी जारी है और अभी भी मलबे में दबे हुए अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये इमारत फेंस के अल मसीरा क्षेत्र में स्थित है, जहां 8 परिवार रहा करते थे। प्रारंभिक दृश्यों में बचाव कर्मियों को शवों को वाहनों में ले जाते हुए देखा जा सकता था, जबकि स्थानीय निवासी बचाव प्रयासों को देखने के लिए एकत्र हुए थे। सुरक्षा अधिकारी आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए फेंस के विश्वविद्यालय अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और जेनजेड प्रतिनिधियों के बीच हुआ 10 सूत्रीय समझौता भ्रष्टाचार मानवाधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। सभी से चुनाव संपन्न कराने के कार्य में सहयोग करने का प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। काठमांडू विश्वविद्यालय से विभिन्न 17 देशों के 196 सहित 2209 छात्र हुए दीक्षित और मोरक्को के एक ऐतिहासिक शहर फेंस में एक दो मंजिला इमारत के ढहने से कम 19 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।